एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमें नवाचार मतलब इनोवेशन की जड़ों तक ले जाती है।
नमस्कार, हम बात कर रहे हैं विलियम रोजन की किताब की, जिसका टाइटल हमारे स्रोतों में बताया गया है द मोस्ट पावरफुल आइडिया इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली विचार। और ये टाइटल ही आप देखें तो अपने आप में एक पहेली जैसा है, जिस पर हम आज थोड़ी बात करेंगे।
हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात ये है कि ये जो सबसे शक्तिशाली विचार है, इसको लेकर दो कह सकते हैं अलग अलग व्याख्याएं सामने आई हैं। एक नजरिया तो कहता है कि ये विचार असल में आविष्कार करने की प्रक्रिया का आविष्कार है।
हाँ, मतलब विज्ञान, पेटेंट कानून और वो जो सटीक इंजीनियरिंग होती है ना, उसका पूरा ताना बाना।
सही। और दूसरा नजरिया ये कहता है कि नहीं भाई, भाप का इंजन खुद ही वो शक्तिशाली विचार है, वही है जिसने पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल दी।
अच्छा,
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन दोनों तर्कों को समझें और देखें कि औद्योगिक क्रांति को असल में किस चीज ने रफ्तार दी।
बिल्कुल, और देखिए ये सदियों पुरानी कहानी आज भी कितनी मायने रखती है ना, ये समझने के लिए कि भाई नई खोजें होती कैसी हैं, इनोवेशन को कौन सी चीजें आगे बढ़ाती हैं और कैसे कोई विचार हकीकत का रूप लेता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस शक्तिशाली विचार के पीछे का राज क्या है।
हाँ, तो पहले लेखक विलियम रोजन, उनके बारे में थोड़ा जान ले। रोजन 1955 to 2016 एक अमेरिकी इतिहासकार और लेखक थे, और उनकी खासियत थी मतलब वो विज्ञान और तकनीक के इतिहास को बड़ी दिलचस्प कहानियों की शक्ल देते थे।
अच्छा,
वो सिर्फ ये नहीं बताते थे कि क्या हुआ, बल्कि उसके पीछे का क्यों और कैसे उस पर ज्यादा जोर देते थे।
हाँ, ये बात तो है, उनकी यही खूबी इस किताब को खास बनाती है मुझे लगता है। वो जैसे मुश्किल चीजें हैं ना, थर्मोडायनामिक्स या पेटेंट कानून की बारीकियां और धातु कलाने या पुर्जे बनाने की कारीगरी, इन सब को एक साथ ऐसे बुनते हैं कि एक बड़ी तस्वीर सामने आती है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि आविष्कार कोई हवा में नहीं होते, उनके लिए एक पूरा माहौल चाहिए होता है, एक पूरा सिस्टम कह सकते हैं।
और उन्होंने पहले पब्लिशिंग हाउस में भी काम किया था शायद, एडिटर वगैरह।
जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने बड़े प्रकाशन घरों में संपादक के तौर पे काम किया था, तो शायद इसीलिए उनमें ये हुनर था कि वो मुश्किल विषयों को भी आम पढ़ने वालों के लिए आसान और रोचक बना सकें। वो सिर्फ मशीन की बात नहीं करते, बल्कि उस पूरे सामाजिक, कानूनी और तकनीकी ढांचे की बात करते हैं जिसने उस मशीन को, आप कहिए, संभव बनाया।
सही। तो अब आते हैं किताब के मूल विषय पर। ये औद्योगिक क्रांति की कहानी है, लेकिन शायद एक अलग एंगल से।
हाँ, ये किताब हमें औद्योगिक क्रांति की जड़ों तक ले जाती है, उसकी बौद्धिक, कानूनी और तकनीकी बुनियाद तक। और इस पूरी कहानी को जो धागा पिरोता है वो है भाप इंजन का विकास। लेकिन किताब का मकसद किसी एक हीरो की गाथा गाना नहीं है, ये समझना जरूरी है।
तो मतलब ये अकेले जीनियस वाली बात एकदम?
हाँ बिल्कुल, वो मिथक तोड़ती है ये किताब, दिखाती है कि इनोवेशन मतलब मिलजुल कर होता है। ये एक धीमी संचयी प्रक्रिया है जिसमें कई लोगों का योगदान होता है, और ये उस समय के पूरे सिस्टम, कानून, बाजार, तकनीक, उस पर निर्भर करती है।
और वो जो दो अलग अलग तर्क थे सबसे शक्तिशाली विचार को लेकर, उन्हें जरा फिर से साफ करते हैं श्रोताओं के लिए।
जी, पहला तर्क जो एक स्रोत पर आधारित है, वो कहता है कि असली क्रांति भाप इंजन नहीं बल्कि आविष्कार का आविष्कार था।
आविष्कार का आविष्कार?
हाँ, यानी वो तरीका, वो प्रणाली जिसमें वैज्ञानिक ढंग से सोचना, आविष्कारों को पेटेंट के जरिए सुरक्षित करना और चीजों को बेहद सटीकता से बनाने की काबिलियत, ये सब शामिल था। भाप इंजन तो बस इस सिस्टम का सबसे कामयाब नतीजा था, कह सकते हैं।
अच्छा, और दूसरा तर्क, वो तो सीधे भाप इंजन को ही हीरो मानता है।
हाँ, वो कहता है कि भाप इंजन खुद ही वो क्रांतिकारी विचार था। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार इंसान को, आप सोचिए, जानवरों की ताकत या हवा, पानी जैसे प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की सीमाओं से आजाद कर दिया। इसने ऊर्जा के एक नए अथाह स्रोत के दरवाजे खोल दिए।
ये दोनों ही तर्क सोचने पर मजबूर करते हैं। वैसे तो ये किताब पाठक को किस तरह की यात्रा पर ले जाती है? क्या एक सीधी कहानी है?
ये एक बहुत लंबी और दिलचस्प यात्रा है, सीधी से ज्यादा घुमावदार कह सकते हैं। कहानी शुरू होती है प्राचीन यूनानियों से, जो हवा और खालीपन मतलब वैक्यूम के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम पहुंचते हैं 18वीं सदी के इंग्लैंड में,
जहां कोयला खदानें थी।
बिल्कुल, जहां कोयला खदानों में भरता पानी एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या बन चुका था और उसे बाहर निकालने के लिए एक शक्तिशाली पंप की सख्त जरूरत थी। तो इस सफर में हमें कानून, विज्ञान, कारीगरी और व्यापार सबके दुनिया की झलक मिलती है।
अच्छा, चलिए अब इस कहानी के कुछ अहम पड़ावों को और करीब से देखते हैं। शुरुआत शायद वैज्ञानिक समझ से करनी होगी। आपने वैक्यूम का जिक्र किया।
हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि भाप की शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले शून्य यानी वैक्यूम की शक्ति को समझना जरूरी था। ये जानना कि हमारे चारों ओर की हवा में कितना जबरदस्त दबाव है, ये अपने आप में एक बड़ी खोज थी।
और इसमें किन लोगों का योगदान रहा, कुछ नाम याद है?
हाँ, कई नाम हैं जिन्होंने मिलकर ये समझ विकसित की। जैसे इटली के टोरिसेली, उन्होंने बैरोमीटर बनाया और साबित किया कि हवा में वजन होता है।
अच्छा।
फिर जर्मनी के वॉन गिरेके, उनका वो मशहूर मैग्डबर्ग गोलार्ड वाला प्रयोग था ना।
हाँ हाँ, सुना है, वो घोड़ों वाला।
वही, उन्होंने दिखाया कि हवा का दबाव कितना ज्यादा हो सकता है। दो बड़े खोखले गोलों को जोड़ा, हवा निकाली और फिर घोड़ों की टीमें भी उन्हें अलग नहीं कर पाईं। फिर रॉबर्ट बॉयल आए, उन्होंने गैस के दबाव और आयतन के बीच का रिश्ता समझाया, जिसे बॉयल का नियम कहते हैं। और डेनिस पैपिन वो शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि भाप को ठंडा करके पिस्टन के नीचे वैक्यूम बनाया जा सकता है। ये एक बड़ा कदम था।
तो ये सब वैज्ञानिक खोजें उस नींव की तरह थीं जिस पर आगे चलकर इंजन बना। और ये सब मतलब वैज्ञानिक क्रांति के दौर में हो रहा था, जब लोग दुनिया को नए नजरिए से देख रहे थे, माप तौल कर समझ रहे थे।
बिल्कुल, और इसी वैज्ञानिक समझ ने फिर एक व्यवहारिक समस्या का हल निकालने में मदद की। वो समस्या थी इंग्लैंड की कोयला खदानों में भरता पानी।
हाँ, आपने बताया था।
जैसे जैसे खदानें गहरी होती गईं, पानी निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। और कोयला उस वक्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत था, तो ये गंभीर आर्थिक संकट भी था।
और इस समस्या का पहला व्यवहारिक हल किसने निकाला? न्यूकोमन ने।
जी हाँ, वो थे थॉमस न्यूकोमन, एक लोहार और आविष्कारक। करीब 1712 में उन्होंने एक इंजन बनाया जिसे वायुमंडलीय इंजन कहते हैं। इसका काम करने का तरीका बड़ा अनोखा था।
कैसे काम करता था ये?
देखिए, सिलेंडर में थोड़ी भाप भरी जाती थी, फिर उस पर ठंडा पानी डालकर भाप को जमा दिया जाता था, कंडेंस कर दिया जाता था। इससे सिलेंडर में आंशिक वैक्यूम मतलब खालीपन जैसा पैदा होता। तब बाहर की हवा का जो दबाव है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो पिस्टन को नीचे धकेलता था।
अच्छा।
हवा का दबाव काम करता था।
हाँ।
और यही इंजन की ताकत थी जो पंप चलाती थी।
लेकिन सुना ये इंजन बहुत ज्यादा कोयला खाता था, मतलब एफिशिएंट नहीं था।
हाँ बिल्कुल, ये बहुत कुशल नहीं था। इसे कोयले का भूखा भी कहते थे। ऊर्जा की बहुत बर्बादी होती थी। लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा था। इसने पहली बार ये साबित कर दिया कि गर्मी को इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर काम करना मुमकिन है और इससे पैसा कमाया जा सकता है। इसने एक तरह से रास्ता खोल दिया, आगे के सुधारों के लिए एक मंच तैयार कर दिया।
और यहीं से कहानी में जेम्स वॉट आते हैं, जिनका नाम भाप इंजन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है। वो न्यूकोमन से अलग कैसे थे? क्या वो बेहतर कारीगर थे?
जेम्स वॉट सिर्फ एक कारीगर नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक सोच वाले उपकरण निर्माता थे। कहानी है कि उन्हें ग्लासगो यूनिवर्सिटी में न्यूकोमन इंजन का एक मॉडल ठीक करने को मिला। उन्होंने देखा कि ये कितना ज्यादा कोयला बर्बाद करता है और वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है।
अच्छा, तो उन्होंने प्रॉब्लम पर ध्यान दिया।
बिल्कुल, उन्होंने गौर किया कि न्यूकोमन इंजन में एक ही सिलेंडर को बार बार भाप से गर्म किया जाता था और फिर पानी से ठंडा। इसी गर्म ठंडा करने में ही बहुत सारी ऊर्जा बेकार चली जाती थी। उन्होंने समस्या की जड़ पकड़ ली थी, ये ऊर्जा की बर्बादी।
और यहीं से उनका वो बड़ा आइडिया आया।
हाँ, यहीं से उनकी वो क्रांतिकारी खोज निकली जिसने सब कुछ बदल दिया। वो थी अलग कंडेंसर का विचार। कहते हैं 1765 में एक दिन टहलते हुए उन्हें ये ख्याल आया, क्यों ना भाप को ठंडा करने का काम मुख्य सिलेंडर के बजाय एक अलग बर्तन में किया जाए।
अलग बर्तन में? इससे क्या फर्क पड़ा?
फर्क बहुत बड़ा था। इससे मुख्य सिलेंडर हमेशा गर्म रह सकता था, उसे बार बार ठंडा करने की जरूरत नहीं रही। ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम हो गई। कहते हैं कि इस एक बदलाव से इंजन की कार्यकुशलता लगभग 4 गुना बढ़ गई।
4 गुना? ये तो जबरदस्त है।
हाँ, और ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं था। वॉट ने बाकायदा गणना करके माप तौल कर इस नतीजे पर पहुंचे थे। ये उनकी व्यवस्थित वैज्ञानिक सोच का नतीजा था।
वाकई कमाल का विचार। लेकिन जैसा हम पहले कह रहे थे, सिर्फ एक अच्छा विचार होना ही काफी नहीं होता। उसे दुनिया के सामने लाने के लिए, उसे बनाने और बेचने के लिए और भी चीजों की जरूरत होती है ना?
बिल्कुल। यहीं पर कहानी में दूसरे किरदार आते हैं जो उस सिस्टम का हिस्सा थे जिसकी हमने शुरू में बात की थी। सबसे पहले आते हैं मैथ्यू बोल्टन।
बोल्टन?
हाँ, वो एक सफल उद्योगपति थे जिनके पास पैसा था, व्यावसायिक समझ थी और कह सकते हैं भविष्य देखने की दृष्टि थी। उन्होंने वॉट की क्षमता को पहचाना।
तो वॉट के पास आइडिया था और बोल्टन के पास उसे हकीकत बनाने के साधन, एक तरह की पार्टनरशिप।
जी हाँ, उनकी साझेदारी बोल्टन एंड वॉट दुनिया की पहली इंजीनियरिंग फर्म बनी जो सिर्फ इंजन बनाने पर केंद्रित थी। लेकिन एक और चीज बहुत अहम थी, वो था इंग्लैंड का पेटेंट कानून।
पेटेंट? हाँ, इसका जिक्र हुआ था।
वॉट को अपने अलग कंडेंसर वाले डिजाइन के लिए 1769 में 25 साल का पेटेंट मिला।
25 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। इस पेटेंट का क्या महत्व था? क्या ये सिर्फ नकल रोकने के लिए था?
उससे कहीं ज्यादा। आप सोचिए, वॉट के इंजन को बनाना और उसमें लगातार सुधार करना एक महंगा और लंबा काम था। इसमें सालों की मेहनत और बहुत सारा पैसा लगना था। पेटेंट ने उन्हें यह सुरक्षा दी कि कोई और उनके डिजाइन की नकल करके तुरंत फायदा नहीं उठा लेगा। इस सुरक्षा की वजह से ही बोल्टन जैसे निवेशक पैसा लगाने को तैयार हुए। तो पेटेंट सिर्फ एक कानूनी कवच नहीं था, ये इनोवेशन को आर्थिक रूप से संभव बनाने वाला एक जरिया था।
एक स्रोत इसे औद्योगिक क्रांति का दूसरा स्तंभ कहता है। अच्छा, पहला स्तंभ वैज्ञानिक समझ, दूसरा पेटेंट, तो फिर तीसरा क्या था?
तीसरा स्तंभ था सटीक कारीगरी, यानी प्रिसिजन इंजीनियरिंग। वॉट के डिजाइन कागज पर तो बेहतरीन थे, लेकिन उन्हें असल में बनाने के लिए उस जमाने के कारीगरों के पास जरूरी हुनर और औजार नहीं थे। खासकर सिलेंडर को एकदम गोर और चिकना बनाना बहुत मुश्किल था, ताकि पिस्टन बिना भाप लीक किए चल सके।
हाँ, ये तो सोचा ही नहीं, तो इसका हल कैसे निकला?
हल आया एक बिल्कुल अप्रत्याशित जगह से, तोप बनाने की तकनीक से। जॉन विल्किंसन, जिन्हें मजाक में आयरन मैन विल्किंसन कहते थे, उन्होंने 1774 में एक ऐसी मशीन बनाई, एक बोरिंग मिल, जो तोप की नली को अंदर से अभूतपूर्व सटीकता से गोल कर सकती थी।
अरे वाह!
यही तकनीक वॉट के इंजन के सिलेंडर बनाने के काम आ गई। विल्किंसन ही वो पहले शख्स थे जो वॉट के लिए इतने सटीक सिलेंडर बना पाए।
ये तो कमाल की बात है, यानी युद्ध की तकनीक शांतिपूर्ण काम आई। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये एक तरह का फीडबैक लूप भी बन गया होगा, है ना?
हाँ बिल्कुल। बेहतर औजारों से बेहतर इंजन बने, फिर उन बेहतर इंजनों से मिली शक्ति का इस्तेमाल और भी बेहतर औजार बनाने में किया गया। ये तकनीक का खुद को बेहतर बनाते जाने का सिलसिला था। विल्किंसन की सटीक कारीगरी को तीसरा स्तंभ कहा जा सकता है।
तो ये तिकड़ी, वैज्ञानिक समझ, कानूनी सुरक्षा यानी पेटेंट, और सटीक निर्माण क्षमता, क्या यही वो सिस्टम था जिसने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया, जैसा एक स्रोत कहता है?
जी, एक प्रमुख तर्क यही है। ये मॉडल विज्ञान, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और इंजीनियरिंग कौशल का संगम, ये आगे चलकर हर तरह की तकनीकी तरक्की का आधार बना। इसके बाद हेनरी मॉडस्ले जैसे इंजीनियर आए जिन्होंने और भी सटीक मशीनें जैसे स्क्रू कटिंग लेथ बनाई। इससे मानकीकृत पुर्जे, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स, बनाना संभव हुआ, जिसने बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मैस प्रोडक्शन का रास्ता खोल दिया।
और फिर भाप की शक्ति का असर कहां तक फैला? मतलब सिर्फ खदानों से पानी निकालने तक तो नहीं रुका होगा?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर जगह फैल गया। इसने परिवहन में क्रांति ला दी। स्टीम बोट नदियों और समंदरों पर चलने लगी। रेलगाड़ियों ने जमीन पर दूरी और समय को जैसे समेट दिया।
हाँ, रेलवे तो बहुत बड़ा बदलाव था।
बिल्कुल। कारखाने अब किसी नदी किनारे होने पर मजबूर नहीं रहे, वो कहीं भी लग सकते थे। खेती में भी भाप इंजन का इस्तेमाल होने लगा। इसने समाज के पूरे ताने बाने को, आप कहिए, बदल कर रख दिया।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से निकले मुख्य विषयों या संदेशों को समेटें, तो वो क्या होंगे दोनों नजरियों को ध्यान में रखते हुए?
देखिए, कई अहम बातें हैं। पहला, जैसा एक नजरिया कहता है, आविष्कार का आविष्कार, यानी वो पूरी प्रणाली जिसमें विज्ञान, पेटेंट और इंजीनियरिंग एक साथ काम करते हैं। दूसरा, जैसा दूसरा नजरिया जोर देता है, भाप की शक्ति का वो जबरदस्त क्रांतिकारी असर जिसने हमें ऊर्जा की पुरानी सीमाओं से मुक्त किया।
और इसके अलावा
सहयोग वाली बात भी थी शायद। हाँ बिल्कुल, सहयोग का महत्व। ये कहानी किसी एक हीरो की नहीं बल्कि वॉट, बोल्टन, विल्किंसन जैसे कई लोगों के मिलकर काम करने की है। फिर आर्थिक प्रोत्साहन की भूमिका, पेटेंट से मिलने वाली सुरक्षा, बाजार की जरूरतें, मुनाफा कमाने की संभावना, ये सब इनोवेशन को आगे बढ़ाते हैं।
और ये भी कि इनोवेशन अक्सर एक झटके में नहीं होता बल्कि धीरे धीरे सुधार होता है, जैसे वॉट ने न्यूकोमैन के इंजन में किया।
हाँ, व्यवस्थित सुधार का महत्व। न्यूकोमैन का इंजन परफेक्ट नहीं था लेकिन वो एक शुरुआत थी। साथ ही तकनीक के फीडबैक लूप, कैसे एक खोज दूसरी खोज को संभव बनाती है। और आखिर में सटीकता और मापतौल का महत्व। सिर्फ विचार ही नहीं, उसे सटीकता से बना पाने की क्षमता भी क्रांति का एक अहम हिस्सा थी।
इन विषयों को अगर आज के भारत के संदर्भ में देखें तो कई बातें जुड़ती हैं। जैसे हम रेलवे के असर को देख सकते हैं, जिसने देश को कैसे जोड़ा, व्यापार बदला, लोगों की आवाजाही आसान की, ये सब भाप की शक्ति का ही तो नतीजा था, है ना?
सही कहा।
या फिर हम वो सिस्टम वाले विचार को देखें। आज भी भारत में कोई छोटा स्टार्टअप या कोई उद्यमी है, वो सिर्फ एक अच्छे आइडिया से सफल नहीं हो सकता। उसे फंडिंग चाहिए, जैसे बोल्टन ने दी, शायद अपने आइडिया को बचाने के लिए कानूनी मदद चाहिए पेटेंट की तरह, उसे बनाने के लिए सही तकनीक और हुनर चाहिए विल्किंसन की तरह, और बाजार तक पहुंचने की रणनीति भी। पूरा इकोसिस्टम जरूरी है।
बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। अब कुछ ऐसे विचारों पर बात करते हैं जो इस किताब से या इसके विश्लेषण से उभरते हैं। ये सीवे कोटेशन नहीं है बल्कि स्रोतों में दिए गए तर्कों का सार है, मतलब उनकी आत्मा।
जरूर जरूर, पहला विचार क्या है?
पहला विचार कुछ इस तरह है, औद्योगिक क्रांति की कहानी सिर्फ कोयले और लोहे की नहीं बल्कि विचारों की है। खालीपन, वैक्यूम का विचार, पेटेंट का विचार और एकदम गोल सिलेंडर बनाने का विचार। सबसे जरूरी कच्चा माल तो दिमाग था। ये इस बात पर जोर देता है कि मशीनों से पहले सोचने का तरीका बदलना जरूरी था।
यानी असली बदलाव हमारे दिमाग में हुआ। दूसरा विचार?
दूसरा, जेम्स वॉट ने पहला भाप इंजन नहीं बनाया था लेकिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसके बारे में सही सवाल पूछे। उन्होंने प्रयोगशाला वाली सटीकता और नाप तौल को खदान में लगी भारी भरकम मशीन पर लागू किया। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक तरीके को व्यवहारिक समस्या पर लागू करना कितना जरूरी है।
मतलब सिर्फ बनाना नहीं बल्कि समझना, मापना और फिर सुधारना।
बिल्कुल।
तीसरा विचार?
तीसरा पेटेंट से जुड़ा है। बोल्टन और वॉट का पेटेंट सिर्फ मशीन बनाने का लाइसेंस नहीं था, ये वो आर्थिक साधन था जिसने सालों तक चलने वाले शोध और विकास के लिए पैसा मुहैया कराया। ये बौद्धिक संपदा की आर्थिक भूमिका को उजागर करता है कि ये कैसे निवेश को प्रोत्साहित करती है।
हाँ, ये बहुत अहम बात है। यानी पेटेंट सिर्फ कानूनी सुरक्षा नहीं बल्कि इनोवेशन के लिए ईंधन जैसा था।
जी।
चौथा विचार?
ये दूसरे नजरिए को दर्शाता है। भाप इंजन ने इंसान की काम करने की शक्ति को उन बंधनों से आजाद कर दिया जो हजारों सालों से उस पर हावी थे। ये भाप की उस जबरदस्त मुक्ति देने वाली शक्ति पर केंद्रित है जिसने उत्पादन की सीमाएं तोड़ दी।
और शायद एक आखिरी विचार भी है।
हाँ, एक और है। सबसे शक्तिशाली विचार वो होते हैं जो न सिर्फ ये बदलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बल्कि ये भी बदलते हैं कि हम क्या सोचना संभव मानते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कोई बड़ी तकनीकी खोज हमारी सोच की हदों को ही बदल देती है।
वाह, ये सारे विचार हमें इतिहास से सीखने का कितना मौका देते हैं। अब सवाल ये है कि इन सीखों को हम आज की दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस में, पॉलिसी मेकिंग में या अपनी सोच में?
देखिए, व्यापार और नवाचार के लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि इनोवेशन को एक सिस्टम की तरह देखें। सिर्फ एक शानदार आइडिया होना काफी नहीं। रिसर्च और डेवलपमेंट, बिजनेस मॉडल, उत्पादन क्षमता और कानूनी पहलू सबको साथ लेकर चलना होगा। अलग अलग हुनर वाले लोगों की टीम, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स बनानी होंगी और लगातार सुधार करते रहना होगा।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं, सरकारें, उनके लिए क्या सबक है इसमें?
उनके लिए ये समझना जरूरी है कि बौद्धिक संपदा कानून क्यों अहम है, रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां नए विचारों को फलने फूलने का मौका मिले, जिसमें सही कानून, आर्थिक मदद और शिक्षा सब शामिल हों।
सही है। और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या सोच में क्या बदलाव ला सकते हैं इन बातों से?
शायद हम ये समझ सकते हैं कि तरक्की धीरे धीरे कई लोगों की मेहनत से होती है। आज हम जो भी तकनीक इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे सालों का इतिहास और एक पूरा सिस्टम छिपा होता है, उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम इनोवेशन के पैटर्न को समझने की कोशिश कर सकते हैं ताकि भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें।
इसे एक छोटे आज के उदाहरण से सोचें। मान लीजिए कोई नया एंटेक स्टार्टअप है, उसके पास पढ़ाने का एक बहुत अच्छा नया तरीका है। ये मान लीजिए व्हाट का आइडिया हो गया।
हाँ।
लेकिन उसे सफल होने के लिए एक निवेशक चाहिए जो पैसा लगाए। ये हो गए बोल्टन। शायद अपने कंटेंट को बचाने के लिए कॉपीराइट चाहिए, पेटेंट जैसा। एक अच्छा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चाहिए जो लाखों यूजर संभाल सके। ये विल्किंसन की सटीकता जैसी बात हो गई। और बच्चों और पेरेंट्स तक पहुंचने का तरीका भी चाहिए। ये पूरा सिस्टम मिलकर ही उसे कामयाब बनाएगा, है ना?
बिल्कुल सही उदाहरण। तो अंत में इस पूरी बातचीत से हमारे लिए सबसे बड़ी सीख क्या है, आप क्या कहेंगे?
मेरे लिए शायद ये कि औद्योगिक क्रांति किसी एक चीज का नतीजा नहीं थी, ये कई चीजों के एक साथ आने से हुई। वैज्ञानिक जिज्ञासा, व्यवहारिक जरूरत, कानूनी ढांचा, व्यापारिक अवसर और बनाने का हुनर। शायद वो सिस्टम ही असली शक्तिशाली विचार था, जैसा एक नजरिया कहता है, वो पूरा ढांचा।
हाँ, ये एक मजबूत पक्ष है, लेकिन मुझे दूसरे नजरिए में भी दम लगता है, पता है? शायद ऊर्जा के एक बिल्कुल नए शक्तिशाली स्रोत भाप को काबू में करना ही अपने आप में इतना बड़ा बदलाव था कि उसने बाकी सब चीजों को बदलने पर मजबूर कर दिया। उसी ने उस सिस्टम की जरूरत पैदा की और उसे रफ्तार दी। ये सोचना भी दिलचस्प है कि मुर्गी पहले आई या अंडा, इंजन पहले या इंजन बनाने वाला सिस्टम।
हाँ, ये बहस ही अपने आप में सोचने लायक है, और ये हमें आज के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है कि आजकल क्या चल रहा है।
बिल्कुल, आज वो कौन सी चीजें हैं? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, डेटा का विश्लेषण है, या दुनिया भर में साथ मिलकर काम करने के नए तरीके हैं जो मिलकर अगली बड़ी क्रांति का ताना बाना बुन रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।